शांति। हम सब बाबा के बच्चे पद्मा पद्म भाग्यवान आत्माएं हैं। स्वयं भगवान हम बच्चों के भाग्य के गुणगान करते हैं, महिमा करते हैं। ये सारे कल्प में केवल संगम युग ही ऐसा समय है जो सारे कल्प का भाग्य का खाता हम जमा करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। बाबा हमको ऐसे श्रेष्ठ मत देते हैं, ऐसा रास्ता बताते हैं जो हम सारे कल्प में इतना ऊंच भाग्य प्राप्त करते हैं केवल अभी संगम के समय पर। ये छोटा सा संगम है और इस संगम युग में हम सब आत्माओं का भाग्य ऊंच से ऊंच है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने भाग्य का हमेशा नशा रखो। तुम्हारी पालना कौन करता है, तुम्हें पढ़ाता कौन है? कदम कदम पर बाबा जैसे हमको मदद करते हैं, रास्ता बताते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं, तो आज की मुरली में भी बाबा ने हम बच्चों के भाग्य के लिस्ट के लिए होमवर्क दिया है कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक कौन कौन सा भाग्य है तुम्हारा, लिस्ट निकालो। कितना ये वंडरफुल ड्रामा है कि स्वयं भगवान भाग्य विधाता हमारा भाग्य बना रहा है। जो हम बच्चों की ब्राह्मणों की दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है, वही हम कल क्लास में चर्चा कर रहे थे कि कमाल है हम सब ब्राह्मण आत्माओं का कितना ऊंचा भाग्य है कि कौन से संकल्पों से हमारी दिनचर्या आरंभ होती है, किसकी स्मृति से हमारी दिनचर्या आरंभ होती है, कितने ऊंचे ऊंचे वरदानों से दिनचर्या जिसकी शुरुआत हो उसका सारा दिन कितना अच्छा निकलेगा। सवेरे से ही जैसे आत्मा को फुल चार्जिंग का एक मौका मिल जाता है अमृत वेले, तो अमृत वेले की चार्जिंग सारे दिन में जैसे मदद करती है हम सबको, तो बाबा की दृष्टि बाबा के वरदान से ही हम सबकी दिनचर्या शुरू होती है। बाबा कहते हैं तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तो हम ब्राह्मणों की दिनचर्या ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम पर सदा चलती रहे, इसके लिए बाबा कहते अपने श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट निकालो, कितना ऊंचा भाग्य है जो बाबा कहते संसार में कितनी आत्माएं हैं 550 करोड़, उस समय अभी तो 800 करोड़ की राउंड अबाउट है, लगभग 800 करोड़। तो इन 800 करोड़ आत्माओं से हम ब्राह्मण आत्मा कितनी थोड़ी सी हैं, कोटों में कोई और कोई नहीं वे कोई, तो कितना ऊंचा नशा है ये कि भगवान की दृष्टि सारे संसार की आत्माओं से में से केवल हम सब आत्माओं के ऊपर पड़ती है, ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर। वो ब्राह्मण आत्माएं जिन्होंने सारे कल्प में पार्ट बजाया है, जो सृष्टि की आधार मूर्त है, तो बाबा कहते आप कोटों में कोई और कोई नहीं कोई हो, ये ब्राह्मणों का संसार छोटा सा संसार है, कितना अंतर है ये छोटा सा संसार और संसार की आत्मा वाला संसार कितना बड़ा है। वो अनजान आत्माएं हैं, ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, और बाबा के तुम आत्माएं श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं हो। तो आज बाबा भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों से मिलन मना रहे हैं, बाबा देख रहे हैं हर बच्चे का भाग्य कितना ऊंचा है, मस्तक कैसे भाग्यवान, मस्तक भाग्यवान आत्माओं का मस्तक कैसे चमक रहा है। संसार में तो जी अच्छे लोग बाबा कितने रेखाएं देखते हैं, हाथों की रेखाएं, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान तुम बच्चों के मस्तक पर भाग्य की रेखाओं को देखते हैं। इस मस्तक पर क्या है, दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा चमक रही है, इतना श्रेष्ठ भाग्य है कि मस्तक सदा अलौकिक लाइट से चमकता रहता है। अर्थात जो ब्राह्मण बच्चे बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, पूरा अटेंशन रखते हैं, पुरुषार्थ के प्रति पूरा अलर्ट रहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो उन आत्माओं के मस्तक पर स्वतः ही दिखाई देता है कि वो प्राप्ति से भरपूर आत्माएं हैं। तो उन आत्माओं के मस्तक की लाइट भी जैसे रौनक बढ़ जाती है, तो बाबा हम सब आत्माओं के मस्तक को देखते हैं, क्या क्या निशानी दिखाई देती हैं, मुख में क्या देखते हैं, आंखों में क्या देखते हैं, तो बाबा कहते हैं मुख पर क्या मिलता है, सदा रूहानी मुस्कुराहट, ईश्वरी रूहानी मुस्कुराहट सदा अनुभव होगी, है ना। देखते हैं ना जो जो ब्राह्मण आत्मा अच्छा पुरुषार्थ करती हैं, पुरुषार्थ से जिनको प्यार है, यज्ञ से जिनको प्यार है, सेवा से जिनको प्यार है, ज्ञान योग से जिनको प्यार है, ब्राह्मण परिवार का जो आत्मा सम्मान करती है, तो उनकी खुशी अलग ही महसूस होती है। उनके संपर्क में आने से रूहानियत का अनुभव, रूहानियत की महसूसता, इसलिए बाबा कहते हैं उनकी निशानी क्या होगी, मुस्कुराहट अनुभव होगी, आंखों से क्या होगा, सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त, अर्थात उनकी दृष्टि पड़ते ही दूसरे भी खुश हो जाते हैं, उनके स्वयं संपर्क में आने को जैसे मन करता है बार बार, उनकी दृष्टि में रूहानियत होगी, जैसे बाप की स्मृति दिलाएंगे, वो परमात्म याद में खुद भी होंगे और खुद भी रूहानी बाप की स्मृति का अनुभव कराएंगे। तो ऐसी भाग्यवान आत्माओं के अगर हम सुमन संपर्क में आते हैं, सभी अनुभव करते हैं कि एक हल्केपन का, एक खुशी का अनुभव होता है, अपनेपन का अनुभव होता है ना, लगता जैसे ये हमारे समस्या का समाधान कर सकता है या हमारे दिल की बात को सुन सकता है। तो ऐसी आत्माएं हैं, भाग्यवान आत्माएं। भले ब्राह्मण आत्मा में नंबर वन आत्माएं हैं, भूत बाबा के अंत तक रहेंगे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जिन आत्माओं का भाग्य, जो आत्माएं अपने भाग्य के प्रति हमेशा चिंतन करती हैं, भाग्य को निखारने के लिए पुरुषार्थ करती हैं, तो वो प्रत्यक्ष रूप से उनकी चाल चलन में दिखाई देता है। तो बाबा कहते थोड़ा समय आगे देखो कैसा कैसा समय आ रहा है। तो ये तो 88 की मुरली है। बाबा कहते हैं जब अंत आएगा तो अनुभव होगा, जो ज्ञान से अनभिज्ञान जान आत्मा है उनमें हद के वैराग्य वृत्ति आएगी उनको। लेकिन आप आत्माओं की जो है, आप जो भाग्यवान आत्मा है, वो बेहद के वैराग्य आत्माएं होंगी, उनकी वृत्ति बेहद के वैराग्य होगी। दुनिया वालों में तो अभी कोई वैराग्य नहीं है, लेकिन ये उस समय की बात है, अभी जो दिखता है संसार में वैराग्य लगभग हर आत्मा के मन में आता है कि संसार में परिवर्तन होना चाहिए। आज भी हम संसार में देख रहे हैं कैसे देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, पूरा कब्जा कर रहे हैं, कैसे कैसे उस वहां का माहौल है, परिवारों के परिवार उजड़ रहे हैं, जैसे सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, सारी राजनीतिक हलचल है, ऐसे हर देश जो है वो कुछ ना कुछ हलचल में है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो रिहर्सल होती जाती है, लेकिन फिर भी अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं, क्योंकि मन में आते ही तो संसार में चलता ही रहता है, सदियों से चलता आया है। लेकिन बाबा कहते जब अंत आएगा और वो नजारे दिखेंगे उनको, तो फिर स्वतः बेहद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी, और फिर वो टेंशन में होने के कारण क्या होगा, उनको अटेंशन जाएगा कहाँ, एक बाबा की तरफ जाएगा, अनुभव करेंगे और सबके मन से दिल से आवाज निकलेगी कि सबका बाप एक ही है, अचेता सबका एक ही है। बुद्धि अनेक तरफ से निकल जाएगी और एक बाबा की तरफ आएगी जहां सहारा मिलेगा, असलम का स्थान जिसको बाबा कहते हैं। तो जब ऐसा समय आएगा तो बाबा कहते तुम बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं कैसी हो जाएंगी, तो स्थिति उनकी स्वतः वैराग्य वाली हो जाएगी। वहां से बेहद का वैराग्य पैदा करने के लिए कुछ हमको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि लंबे समय से जो हमारा अभ्यास है, ज्ञान योग से हमारी जो प्रीत है, उस ज्ञान युग से हमारी इतनी प्रीत हो जाएगी कि संसार की तरफ से हमारे आकर्षण स्वतः नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि संसार के आकर्षणों को हम देखते हैं ना, कितना दुख देने वाले हैं, चाहे वो संबंध है, चाहे वो संसार की साधन है संसार के, या अन्य प्रकार की भौतिक व्यवस्थाएं हैं, कुछ भी है, सब जगह क्या है, सब जगह उसका दुख ही दुख है। तो बाबा के अंत में तुम्हारी वैराग्य वृत्ति की स्थिति कैसे हो जाएगी, स्वतः और निरंतर, और हर एक के मस्तक से स्पष्ट भाग्य दिखाई देगा। और अब भी ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में क्या रहता है, सदा भगवान और भाग्य, तो हम आत्माओं का कितना ऊंच भाग्य है। और कहते लिस्ट निकालो सवेरे से, अमृत वेले से भाग्य की लिस्ट निकालो। स्वयं भगवान भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं उठाते हैं, है ना, आह्वान करते हैं, सब अमृत वेले के अनुभव भी आत्माएं महसूस करते होंगी कि कैसे बाबा अमृत वेले उठाते हैं, ना चाहते भी उठाते हैं बाबा, जैसे खटिया हिल रही है किसी की, जैसे कोई कानों में आवाज आकर दे रहा है, जैसे कोई मस्तक के ऊपर हाथ फेर रहा है, एक कमरे में जैसे कोई आवाज आ रही है, किसी न किसी प्रकार की अनुभूति होती है। तो बाबा हम बच्चों के भाग्य को बनाने के लिए कितना हमको बार बार प्रेरित करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं, हमारे मन में नया उमंग उत्साह भरते रहते हैं। तो संसार में तो क्या होता है, भक्ति में देवताओं को भगवान समझते हैं। कितना वंडरफुल है। और यहाँ भगवान हम बच्चों को उठाते हैं, वो तो घंटी बजा कर उठाते हैं, और यहाँ भगवान हम बच्चों को उठाते हैं। थोड़ा कहते हैं अमृत वेले से अपना भाग्य की लिस्ट निकाल, देखो अपना कितना भाग्य है। तो हम ऐसे लिस्ट निकाल रहे थे सवेरे सवेरे, तो कितना भाग्य बड़ा हमारा, अमृत वेले से स्वयं भगवान हमको उठाता है, भगवान हमारे लिए गीत गाते हैं, हमारे भाग्य का गुणगान करते हैं, भाग्य दादा स्वयं हमारा बन जाता है, हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, हमारे साथ रूरूहान करते हैं, बातचीत करते हैं, हमको देख के मुस्कुराते हैं, महसूस कराते हैं, जैसे वरदानी हाथ भगवान के हमारे सिर के ऊपर हैं, हमें वरदानों से जैसे भरपूर कर रहे हैं, सारे वरदान लुटा रहे हैं, हमारे श्रृंगार कर रहे हैं, दिव्य गुण से सजा रहे हैं, जैसे सर्वशक्तियों से हम आत्मा को चार्ज कर रहे हैं, हमारी कर्मेंद्रियों को शीतल कर रहे हैं। 3 दिन था ना पहले मुरली से, अशरीरी बनने से कितने फायदे होते हैं, तो बाबा ने 5 बातें बताई थी। तो हमको लंबे समय तक अशरीरी अवस्था का अभ्यास करना है, और उसमें सचमुच बहुत फायदा होता है। बाबा कहते हैं अशरीरी बनने से एक तो कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, जो कर्मेंद्रियां हमको धोखा देती हैं बार बार, उस धोखे से हम बच जाएंगे। तो अशरीरी बनने से हमारी कर्मेंद्रियां शांत शीतल हो जाएंगी, देह का अभिमान टूटता जाएगा, नाम रूप से मुक्त होते, नाम रूप की जो बीमारी उससे मुक्त होते जाएंगे, भाई भाई की वृत्ति स्वतः रहेगी और निरंतर बाप की याद बनी रहेगी। तो ये शरीर बनने के कितने फायदे है, तो बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं हम बच्चों को। तो बाबा देखो हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि स्वयं भगवान हमें अपनी दृष्टि में समा लेते हैं, है ना, पावरफुल दृष्टि से हमको निहाल कर देते हैं, है ना, सेहत का समझदार बना देते हैं, अपने दिल में समा लेते हैं, नए नए टचिंग कराते हैं, नए नए संकल्पों को टचिंग कराते हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराते हैं, कितनी खुशी मिलती है सवेरे सवेरे। तो हमें कितना ना अपने प्रति अलर्ट रहना चाहिए, कितना भगवान के सुख का हमको अनुभव कर लेना चाहिए, है ना, बुद्धि हमारी कितनी शुद्ध कर देते हैं। बुद्धि में क्या होता है, नए नए विचार आते हैं, फिर इतना बाबा का ज्ञान है विस्तार से, उस ज्ञान को मनन चिंतन करने की एक हमको नई युक्ति मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है, आदत पड़ जाती है, है ना। कितने प्रकार के बाबा दुखों से मुक्त करते, बाबा ने उस दिन कहा ना तुमको, तुम हो सच्चे सच्चे राजऋषि, राजऋषि अर्थात पवित्र। तो ये पवित्रता का बल कहाँ से आया, बाबा हमारे में कितना पवित्रता भरते हैं, पवित्रता का बल, है ना। उस दिन था ना मुरली में, याद की शक्ति तुम अपने में भरते हो। तो हम 4-5 दिन से यही महसूस कर रहे थे योग में बैठे हुए, जैसे देखना है कि मुझे आत्मा में याद की, परमात्म याद की शक्ति बढ़ रही है, स्थूल में महसूस करना है। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं तो दिखता है 10% हो गई, 20%, 25%, 30%, 50%, 100%। ऐसे ही योग में बैठे हुए हमको ये अनुभव करना है कि बाबा की याद की शक्ति से मैं आत्मा चार्ज होती जा रही हूँ, इतने परसेंट हो गई, अब इतने परसेंट हो गई, अभी फुल चार्ज हो गई हूँ, तो महसूस करना है। तो हमें कितने प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देते हैं, जो उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त कर देते हैं, कितनी हमारी आदतें मीठी बन जाती हैं, स्वयं भगवान हमको साथ साथ दे रहे हैं इस समय, कितनी बड़ी बात है, है ना। फरिश्ता जीवन का अनुभव करते हैं, उस दिन कितनी सुंदर बात थी, बाबा हमको ज्ञान की कस्तूरी सौगात में देते हैं, तो हमारा हृदय कितना शुद्ध हो जाता है ना। तो ये और आज के मुंड में ब्रह्मा भोजन, तो कितने सारे हमारे बाबा के, बाबा हमारे ऊपर कितने उपकार करते हैं। तो ये एक एक बात के प्रति हम अगर सोचें गहराई से, तो हमारा कितना ऊंचा भाग्य है। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले से देखो तुम अपने भाग्य की लिस्ट निकालो, है ना। तो बाबा स्वयं उठाता है हमको, जैसे मधुबनी की बाबा ने स्थिति की बात की, स्थान की बात की, स्थान का भी कितना बड़ा महत्व है। मधुबन में आते हैं तो योग लगाना नहीं पड़ता, बल्कि योग युक्त स्थिति स्वतः बन जाती है, क्योंकि यहाँ लंबे समय से हमारी दादियों ने, स्वयं ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने इतनी साधना की, तपस्या की है, और जितने भी ब्राह्मण आत्माएं आती हैं तो बड़ी ऊंची मेंटेलिटी के साथ आती हैं, बड़े ऊंचे विचारों के साथ आती हैं कि हमको यहाँ तपस्या करनी है। तो यहाँ 2400 घंटे जो तपस्या का वातावरण बना रहता है, तो उस वातावरण से वातावरण के संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आती है तो वो अच्छे से अच्छा अनुभव करती है। तो ये भी हमको करना है। तो मधुवन का जो स्थान है कैसी स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, कितनी अच्छी स्थिति है, लोग लगाना नहीं पड़ता बाबा कहते बल्कि लगा हुआ रहता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं अमृत वेले भी क्या करो, अमृत वेले चले आओ मेरे पास। कहाँ पर? एक तो परम धाम या सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ बैठ जाओ, है ना। तो क्या होगा फिर, अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन उसकी मदद मिलती जाएगी और अपने भाग्य को स्मृति में रखो, है ना। फिर अपने भाग्य का गुणगान करते हो, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, दिनचर्या भगवान से शुरू होती, कितनी बड़ी बात है। तो बाबा कहते फिर अपना और क्या देखोगे। हाँ यहाँ एक और बात थी संघ की बात, ऊंचे स्थान पर बाप के संग में बैठ जाएंगे तो संघ का प्रभाव पड़ता है, जैसा संघ वैसा रंग। वैसे भी कोई व्यक्ति किसी के साथ रहता तो उसके सारे गुण उसमें आते जाते हैं, इसी तरह से हम सब आत्माएं भगवान के संग में रही तो भगवान के सारे गुण, उसकी शक्तियां, उसके सारे खजाने, उसके सारे विचार, संकल्प, संस्कार, वो हम सब आत्माओं के अंदर समाते जाएंगे। तो हमको ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ परम धाम में बैठा हूँ, है ना, महसूस करना। अशरीरी बनेंगे, उस दिन कहा ना बाबा ने अशरीरी बनने का अभ्यास करो, तो लंबे समय तक हमको अशरीरी बनना है, बार बार ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा अशरीरी हूँ, शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, ये तो जो थोड़े समय के लिए घर मिला हुआ है, मैं मेहमान इसके अंदर हूँ। उस दिन था स्लोगन, जो बच्चे मेहमान अन की स्थिति में रहते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं, जो बच्चे मेहमान बनकर रहते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। तो मेहमान हूँ मैं आत्मा इस देह में, ये कुछ दिनों के लिए मुझे देह मिली हुई है, अब इससे अच्छी सर्विस करनी है और फिर मुझे आत्मा को इस देह से वापस लौट जाना है अपने घर शांति धाम परम धाम, जहाँ स्वयं बाबा मुझे पुकार रहे हैं। तो महसूस करना मैं शरीरी आत्मा बाबा के साथ बैठी हुई हूँ जैसे। फिर बाबा कहते सूक्ष्म वतन में बैठ जाओ, सूक्ष्म महसूस करो जैसे वरदानी हाथ बाबा ने मेरे सिर पर रखा हुआ है और सारे वरदान मुझे आत्मा के अंदर आते जा रहे हैं, बाबा वरदान लुटा रहे हैं, मेरे कर्मिंद्रियां जैसे शीतल होती जा रही हैं, एकदम देह अभिमान टूटता जा रहा है और एक अतिंद्रिय सुख का अनुभव मैं आत्मा करती जा रही हूँ। तो महसूस करना। बाबा कहते अपने भाग्यों को देखो, स्वयं भगवान टीचर बनकर हमको पढ़ाने आते हैं, शिक्षक बनकर कितनी दूर से आते हैं बाबा, और पढ़ाने के लिए क्या है, कोई फीस नहीं लेते हैं, कोई बहानेबाजी नहीं करते हैं, कोई ऐसा नहीं बोलते कि आज मैं लेट हो गया हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट समय पढ़ाते हैं, कोई बहाना नहीं कि आज मेरे सिर दर्द है, आज बीमार हूँ, कोई बहाना करते बाबा कभी। तो हम बच्चों का कितना बड़ा भाग्य है कि स्वयं भगवान हमको परम धाम से पढ़ाने आते हैं, तो हमको पढ़ाई का कितना कदर होना चाहिए, पढ़ाई के प्रति कितनी प्रीत होनी चाहिए, कितनी लगन होनी चाहिए, है ना। पहले भी जिक्र करते ना दादियों के जीवन में कितनी उनको लगन थी मुरली के प्रति, बार बार मुरली पढ़ना। आज भी हम देखते हैं कि भाई बहन मुरली के प्रति बहुत अटेंशन रख के उसके ऊपर बार बार पढ़ते रहते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट निकालते हैं, तो हमको ये सीखने को मिलती है सारी बातें। तो स्वयं भगवान हमारा टीचर बनकर हमको पढ़ाते हैं, जो स्नेही बच्चे स्किल्ड बच्चे कहते रहते हैं बाबा, है ना, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, चाहे परिवार में सेवा के अंदर है, कोई भी कर्म करो वो ड्यूटी जाओ, बाबा कहते सदा अनुभव करो कि मैं साथ हूँ, करावन हार बाप करा रहा है, अकेले नहीं हो। बाबा कहते हमेशा कर्म करते हुए, पढ़ाई के बाद क्या हम कर्म क्षेत्र जाते हैं, तो कर्म करते ही बाबा कहते अपने आप को हमेशा अकेला नहीं समझो, साथ समझो, बाबा जैसे मेरे साथ है, करावन हार बाप करा रहा है, मैं आत्मा कर्णहार हूँ, मैं आत्मा बालक हूँ और बाप मालिक है, ये स्मृति रखो, मालिक बाप के साथ मैं आत्मा कर रही हूँ, वो डायरेक्शन दे रहा है। बाबा कहते बोझ क्यों उठाते हो, हमेशा समझो कि मैं अकेला नहीं हूँ, बाप मेरे साथ में है। अकेले करते हैं अकेलेपन का भान तो क्या आता है, कौन सा दरवाजा, मैंपन का दरवाजा खुल जाता है, फिर क्या कहते हो माया आ गई। बाबा कहते हैं इंतजाम तो तुम बच्चों ने किया, फिर माया तो इंतजार में रहती है, तो तो ऐसा कर्म क्यों करते हो? इसलिए अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा अनुभव, तो भारीपन अनुभव, तो खींचाता अनुभव नहीं होगा। बोझ किसका होता है? बोझ मालिक पर होता है, मालिक पर होता है ना। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं हमेशा अपने को बालक समझो, मैं बालक हूं और मालिक बाप है, तो मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते तो बाप के दुख आता है, इसलिए कहावत भी है ना, बड़े कहाना दुख, बड़े दुख उठाना। इसलिए हर कर्म में भगवान को अपना जिम्मेवार बनाएंगे तो बाबा कहते सदा हल्के रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, जब समस्या कोई आती है तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करते हैं, और जब समस्या खत्म हो जाती है तो मस्त हो जाते हैं, है ना। इसको कहते हैं मौका प्रस, मौका प्रसाद, अर्थात जब कोई भी मुसीबत आई, जरूरत पड़ी तो किसके पास चले गए, और जब जरूरत पूरी हुई तो हम किनारे हो गए। तो ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते सदा अच्छे डायरेक्शन प्रमाण, बाबा के कर्म डायरेक्शन प्रमाण कर्म करते रहेंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, और उसका परिणाम उसका फल क्या होगा, बाबा कहते हमेशा खुश रहेंगे, सदा हल्के रहेंगे और फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ते कैसे बाबा कहते कर्म के संबंध में आएंगे, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं। बाप का संबंध क्या है? करावनहार का है ना। तो इसलिए बाबा कहते निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता, जहां निमित्त भाव है तो मैंपन नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा अपने को हम निमित्त समझे, निर्माण समझे, निर्माण का कार्य करते रहे। तो फिर बाबा ने और किसकी बात की, सुलाने से पहले भोजन, ब्रह्मा भोजन की कितनी महिमा बताई। बाबा कहते ब्रह्मा भोजन कौन खिलाता है? स्वयं भगवान। हमेशा ये समझो कि हम भगवान के भंडारे से खा रहे हैं, भले हम गर्गस्थ में रहते हैं, लेकिन हम जो भी कमाई करते हैं, जहां से भी हमारी आमदनी होती है, तो हम हमेशा कर्म करते, तो पहले हमको ये समझना है कि करावनहार बाप मालिक मुझ बालक से, मुझ आत्मा से करा रहा है। मैं निमित्त हूं तो कोई बोझ नहीं होगा, तो हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे और फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। इस अवस्था में जब हम भोजन बनाएंगे तो वो भोजन उन विचारों से, उन श्रेष्ठ विचारों से जब हम भोजन पकाएंगे, तो जो वातावरण वहां का होगा बहुत ऊंचा पवित्र वातावरण होगा, और उस पवित्र वातावरण में स्वीकार किया गया भोजन भी हमारे हृदय को शुद्ध करता है, शक्तिशाली बनाता है, हृदय का शुद्धिकरण कर देता है, पवित्रीकरण कर देता है। तो बाबा कहते तुम बच्चे ब्रह्मा भोजन करते हो, बाबा को अर्पित करते हो। बाबा तो वैसे खाते नहीं है, लेकिन भाषणा बाबा उसमें शक्ति भर देते हैं। तो हम ये ना सोचे सारे दिन मैं कुमार, बाबा कहते अपने को ट्रस्टी समझो, है ना। ट्रस्टी जो है वो हल्का रहता है, गृहस्थी समझेंगे तो बोझ होता है। इसलिए बाबा कहते हमेशा समझो कि हमको ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, ये नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा भोजन की पात्र हैं, पात्र आत्माएं हैं। और भगवान भी हम सबको साथ क्या करते हैं, गारंटी करते हैं 21 जन्मों की आत्मा, 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी रोक नहीं जा सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी जरूर मिलेगी, सब्जी मिलेगी, लेकिन दाल रोटी तो जरूर मिलेंगे। मेहनत की नहीं, लेकिन सदा मेहनत है नहीं है, लेकिन सदा स्मृति में रखो, है ना। तो अमृत वेले से हमको क्या क्या बाबा ने भाग्य दिया है, ये सोचो, लिस्ट बनाओ। तो हमने तो वैसे बनाया 75 पॉइंट्स बनाए, हमने लिस्ट निकाली थी। इसके अलावा तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस मुरली के आधार पर हमने निकाले तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है। तो हमको मुरली में से कुछ ना कुछ होमवर्क निकालना चाहिए खुद, जैसे आज की मुरली में के अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। तो सबने निकाली, निकालनी चाहिए। तो होमवर्क करेंगे तो हमारा थोड़ा दिमाग भी चलेगा, बाबा की मदद भी मिलेगी, हमारी स्थिति भी शक्तिशाली रहेगी, बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे, माया ऊपर अटैक नहीं होगी, माया का दरवाजा बंद हो जाएगा। नहीं तो बाबा कितना माया के इंतजाम तुम बच्चे करते हो, और वो तो इंतजार कर देती है, दरवाजा खुला रखते तुम बच्चे। तो हम बहुत सारी बातों से हो जाते हैं, चिंतन करने से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, बाबा के प्यार की अनुभूति होती है, महसूसता होती है, जैसे बाबा हमको नए नए विचार टच करा रहे हैं, नए नए संकल्प टच करा रहे हैं। फिर बाबा कहते रात को सोचो, है ना, सोते समय कहाँ सो जाओ, बाप की गोदी में सो जाओ, तो क्या होगा, थकावट खत्म हो जाएगी, बीमारी भूल जाएगी, और आराम अर्थात आराम, बाबा ने कितना आराम का जहाँ संधि विषेद किया, बाबा कहते सिर्फ आह्वान करो आराम अर्थात भगवान, तो आराम आ जाएगा। तो आत्मा बहुत हल्की हो जाएगी। अकेले नहीं सो, बाबा कहते अगर अकेले सोते हो तो क्या होता है, उल्टे सुलटे संकल्प चलते हैं। और दूसरी बात, हमारी रात्रि सोने का जो सारा आधार है हमारी दिनचर्या के, सारे दिन में हम जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सब रिकॉर्डिंग हो रहा है हम आत्माओं के अंदर। जब हम रात को सोते हैं तो स्वप्न के रूप में वही चीजें आती है। इसलिए एक मुरली में बाबा ने बताया हुआ है कि स्वप्न का आधार है साकार जीवन। तो हमको सारे दिन में भी थोड़ी थोड़ी अटेंशन रखने की जरूरत है कि हम कुछ ऐसा वैसा कर्म ना करें जो हमारी नींद को प्रभावित कर दे, या उल्टे 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 स्वप्न आए, या हमारे फ्रेशनेस ना हो नींद में। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखने का है ना। तो बाबा कहते अपने बाबा की याद में सो जाओ, है ना। जैसे लोरी सुनाते हैं, लोरी सुनते सुनते सो जाओ तो क्या सुनते हैं लोरी, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, बाबा की लोरी ऐसे लिखनी चाहिए। और कौन कौन सी लोरी, उसके मीठे बच्चे प्यारे बच्चे स्किल्डे बच्चे लाडले बच्चे, ऐसे सोचना है। तो ऐसे लोरी खुद की लोरियां तैयार कर लेनी है। तो हमेशा बाबा कहते सोचो, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, ये भाग्य सदा समृद्ध रखो, ये मर्ज करो, नशा रखो। यहाँ बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना, संसार में हद का नशा कहते बाबा, अगर हद का नशा बोतल में रखी है शराब किसी ने और पी नहीं तो चढ़ेगा कैसे उसको। तो ऐसे ही हम सब बच्चों को बाबा जो ज्ञान का नशा चढ़ाते हैं, केवल हमने डायरी तक ही सीमित रख लिया, या केवल बुद्धि तक ही रखा, उसका चिंतन नहीं किया, उसको उसका मनन नहीं किया, उसको हजम नहीं किया, उसको खाया नहीं, तो उसका नशा कैसे चढ़ेगा। इसलिए हम एक ज्ञान नशे का काम करता है, आत्मा को ज्ञान जैसे आत्मा का भोजन है। तो ये अगर नशा चढ़ाना है, आत्मा इस नशे का अनुभव करे। और नशे में क्या होता है, संसार की सारी बातें व्यक्ति भूल जाता है। तो ज्ञान का भी नशा ऐसे है, इस ज्ञान का जितना नशा चढ़ता जाएगा, हम पुराने संस्कारों को भूलते जाएंगे, पुरानी बातों की विस्मृति होती जाएगी, जितने भी हमारे संबंध संपर्क में कोई ऐसे वैसे कोई किसी के प्रति दुखदायी चर्चा हुई है या कुछ भी, वो सब बातें भूल जाएंगी, हमारे शुद्धपन के जो सारे संस्कार है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने ज्ञान का नशा किया है। और ये बहुत ऊंचा नशा है, क्यों, क्योंकि ये नशा कौन पिला रहा है, स्वयं भगवान पिला रहा है, खुद उसने तैयार किया हुआ नशा है। तो जिस नशे को भगवान ने तैयार किया है, उसको पीने से आत्मा कितनी नशे में चली जाएगी। तो इस नशे को हमको बार बार पीना है। बाबा कहते बोतल में रखने के चढ़ेगा कैसे, तो इसके लिए बाबा कहते विदेशी तो इस नशे के अनुभव भी है ना, हद के नशे के अनुभव भी है। तो फिर हमको बाबा बेहद का नशा देते हैं, तो बेहद का नशा हमको बार बार पीते रहना चाहिए। ये नशा जितना पिए उतना कम, उतना हमारे लिए फायदा है, उतना हम आत्मा उड़ती रहेंगी, हमारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। बाबा ने कहा फरिश्ते जीवन का अनुभव करेंगे, सदा हल्के रहेंगे, सदा खुशी में रहेंगे, दूसरों को भी हल्केपन का अनुभव कराएंगे, रूहानियत का अनुभव कराएंगे, परमात्म याद का अनुभव कराएंगे, बोझ नहीं महसूस होगा, माया का दरवाजा नहीं खुलेगा। कितनी सारी चीजें एक पॉइंट के साथ, लिंक के साथ जुड़ी हुई। तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन हम बाबा कहते इसको इमर्ज करो बार बार, है ना। तो नशा रखना हमको स्मृति में लानी है, स्मृति में लाना बाबा कहते अर्थात पीना, अर्थात इस ज्ञान को पीना है। तो ये ज्ञान एक नशा है, ये नशे को हमको बंद करके रख नहीं देना है, है ना। डेली डेली मुरली में इतने ढेरों सारे पॉइंट आते हैं, नई नई युक्तियां रचनी है कि मुरली को मैं कैसे याद करूं, मुरली को याद रखने के तरीके सीखने हैं, अपने आप से नए तरीके क्रिएट करने हैं, है ना। किस तरीके से मुरली को याद रखें, जैसे आज की मुरली में होमवर्क है अपने भाग्य की रस निकालो। तो हम इस मुरली में अगर देखें कितने प्रकार के भाग्य बाबा ने हम सबको गिनाए हैं, अमृत वेले से रात्रि तक। अमृत वेले तुम्हारा क्या भाग्य है, स्वयं भगवान उठाते हैं, संसार में देवताओं को भगवान समझकर भगत घंटी बजाकर उठाते हैं, और तुम बच्चों को भगवान उठाते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो ये स्मृति है, ये हमारा भाग्य है। तो लिस्ट में एक बात आई, ये वाली आ गई। दूसरी बात है, अमृत वेले के बाद बाबा कहते हैं बाप तुमको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं, है ना। इतनी दूर से आते हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई बहाने का बीमारी का बहाना नहीं करते कि सिर दर्द है। तो ये भी हमारा कितना बड़ा भाग्य कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाने के लिए आ रहा है। तो ये भी हमें तो उस लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा कि हमारा ये भी कितना बड़ा भाग्य है। और कितनी भाग्य की बातें बताई है, सुलाता तो स्वयं भगवान लोरी करके सुनाता है, कर्म करते हुए करावन हार करा रहा है, वो साथी बनकर करा रहा है, वो हमारा मालिक है, हम उसके बालिक हैं, वो हमारा जैसे साथी है, कर्ण करावन हार है, मैं आत्मा कर्ण हार हूं और वो करावन हार है, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, तो उनको काहे की चिंता है। तो ऐसे मुरली को अलग अलग तरीके से, रोचक तरीके से याद करने की युक्तियां खुद सीखनी है। थोड़ा उसमें टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा उसके प्रति रुचि बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी जो हमारी इधर उधर की आदतें हैं उनको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, जो हम इधर उधर की चर्चाओं में शामिल हो जाते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, या व्यस्त से हम मोबाइल से इधर उधर के फोन सुनते रहते हैं, या कई दफा हम भी देखते हैं मोबाइल से पूछेंगे फोन करके आज क्या सब्जी बनाई है, या फलाना कहाँ था, मना उन बातों में हमारी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो उस एनर्जी को हम उधर के बजाय इस ज्ञान की चर्चा में लगाएं, आपस में ज्ञान चर्चा करें, मनन चिंतन करें, मंथन करें कुछ, तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी और उससे हमको एक अलग प्रकार का नशा चढ़ेगा और हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध होती जाएगी कि मुरली के पॉइंट भी धीरे धीरे बैठना उसमें आराम होते जाएंगे। तो अपने ऊपर अपने आप ही कृपा करनी है, अपने उन्हें भाग्य बैठे बैठे नहीं बनेगा, हमको भाग्य बनाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये नशे की बात थी, बाबा कहते अपने भाग्य को देखो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रखो और उससे क्या होगा, बाबा कहते शक्तिशाली बन जाएंगे, समर्थ बन जाएंगे, उड़ते रहेंगे, है ना। तो बाबा कहते समझे क्या करना अपने भाग्य को, है ना। तो यहाँ डबल उद्देश्य की बात थी। तो ऐसे बाबा कहते किनों की कहियों की रेखा मर जाती है और किनों की स्पष्ट दिखाई देती है, बाबा हमारे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं देखते रहते हैं। तो कई बार जो स्मृति में रहते हैं नेचुरली बाबा को वही दिखा देती है स्मृतियों की रेखाएं कौन कौन सी चल रही हैं, और जो विस्मृत रहते हैं तो उनकी रेखाएं अलग प्रकार से हैं, चिंता की, टेंशन की, परचिंतन की, परदर्शन की रेखाएं चेहरे पर उभरती रहती हैं, और फिर वो चेहरे पर रूहानियत भी नहीं होती, वो अभिमान भी स्पष्ट रूप से झलकता है ना, अहंकार दिखाई देगा, बहुत सारी बातें दिखाई देती हैं। तो जितना जितना हम इस ज्ञान में डूबे रहेंगे तो हमारे जो चेहरे पर है बदलाव की रेखाएं दिखाई देंगी, खुशी की झलक दिखाई देगी, रूहानियत की झलक दिखाई देगी, हल्कापन दिखाई देगा। तो हमको देखना हमारा कितना बड़ा भाग्य है। तो बाबा कहते सदा ही समृद्धि में रखो, है ना। फिर बाबा किसके साथ बात करते हैं, दादी जानकी जी से। दादी जानकी जी को बाबा ने क्या कहा कि सदा महारथियों के पांव में क्या होता है, सेवा का चक्कर, जहां भी जाते हैं तो सेवा ही सेवा है, चाहे वो खाते भी हैं या खिलाते भी हैं तो उसमें भी सेवा है, उसमें समय भरा हुआ है, क्योंकि खाना खिलाना भी हम किस मेंटेलिटी के आधार पर कर रहे हैं, हमारे उसमें कौन सी मानसिकता है, हमारी भावनाएं कैसी है उनके प्रति, अर्थात हम किस एटीट्यूड से, किस दृष्टिकोण से, किस वृत्ति से सामने वाले को भोजन परोस रहे हैं, ताकि उसमें बाबा के प्यार के वाइब्रेशन ब्रो हो, प्योरिटी के वाइब्रेशन हो, है ना। तो वो शक्तिशाली जो वायुमंडल के संपर्क में जो अन्य आत्माएं आती हैं तो वो स्वतः सेवा हो जाती है, क्योंकि हमने लंबे समय से अगर अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाया हुआ है तो हमारे समान संपर्क में आने वाली आत्माएं भी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगी, उनमें भी फिर बाबा ने कहा ना बेहद का वैराग्य हो, तो उनके अंदर में भी बड़े हद का वैराग्य आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो हद का वैराग्य भी बेहद के वैराग्य में परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा कहते उठते बैठते चलते फिरते सेवा ही सेवा है, कदम कदम में सेवा है, सेवा समाई हुई है, सेवा का चांस मिलना बाबा कहते बड़ी भाग्य की निशानी है। आप भी समुद्वन में आते हैं तो क्या है, सेवा का लॉटरी है ये, सेवा का चांस है, कितना बड़ा सुनहरा चांस है। संसार में मधुबन में आने के लिए लोग कितना प्रयत्न करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, है ना। एक प्रयत्न की बात पीछे भी थी कि लोग तो भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान शिक्षक बन तुमको पढ़ाते हैं, तो कितना बड़ा हमारा पद्मापद भाग्य है। तो कितनी भाग्य की संपत्ति हमको एक लिस्ट बनाए हम अपने आप। तो बाबा कहते हैं हमेशा अपने भाग्य का गुणगान करते रहो, तो इस गुणगान से क्या होगा, आत्मा को हमेशा उड़ने के पंख लगे रहेंगे, और फिर योग लगाने की जरूरत नहीं, योग वास्तव में लगा ही रहेगा। जितना हम अपने को ज्ञान योग में इन्वॉल्व रखेंगे तो सेवा अपने आप होती रहेगी, धारणाएं हमारी मजबूत होती रहेंगी, और जितना हमारी धारणाएं मजबूत हैं तो हमारा बुद्धि रूपी बर्तन भी शुद्ध होता रहेगा और उसमें ज्ञान भी ठहरता रहेगा, और ज्ञान के आधार पर हमारे योग की जो लाइन है वो क्लियर होती रहेगी, बाबा से अच्छे अच्छे टच में होती रहेगी, संबंधों का अनुभव होगा, शरीर से अटैच होना आसान हो जाएगा, तो ये था सारी मुरली की। तो अमृत वेले से लेकर बाबा ने रात्रि तक कितनी सारी बातें बताई है ना। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं एक छोटा सा संसार है, और संसार के कितने करोड़ आत्माएं हैं, उनमें से हम कोटों में कोई कोई में भी कोई आत्माएं हैं, कितना बड़ा भाग्य है ना। हाँ, तो बाबा तो जोशियों को कहते हैं कि ज्योतिषी तो हाथों की रेखा देते हैं, लेकिन बाबा हमारे मस्तक और देखते हैं, ईश्वरी रूहानी मुस्कुराहट दृष्टि में क्या देखते हैं, खुशी की लहरें जैसे उत्पन्न हो रही है ना। तो ये हर चीज जो है हमको देखना है कि कैसे भगवान एक दृश्य इमर्ज करना है योग में बैठे, इसमें भी कि भगवान मुझे देख रहा है, मुझे दृष्टि दे रहा है, मुझे नजर स्नेहाल कर रहा है, मेरे सिर के ऊपर बाबा का वरदानी हाथ है, और बाबा के हाथों से वरदानी शक्तियां निकलने कर कर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। बाबा के नैनों से शक्तिशाली किरणें निकल कर मेरे नैनों में समाती जा रही है, और मैं जैसे देह से बिल्कुल डिटैच हो रहा हूँ, देह की सिद्ध बुद्ध भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, शरीर से बिल्कुल डिटैच हो गई मैं आत्मा, एकदम सर्व शक्तियों से जैसे संपन्न हो गई, न्यारी प्यारी हो गई, एकदम जैसे मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास पहुंच गई हूँ, बिल्कुल एकदम बड़ी अलौकिक फीलिंग जैसे फील कीजिए, सारे ब्रह्मांड में क्या है, लाइट ही लाइट है, और मैं आत्मा वहां उड़ रही हूँ, बाबा के साथ साथ उड़ रही हूँ, बहुत दूर 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 जा रहे हैं, कितना अलौकिक अतीन्द्रिय सुख है, कितनी खुशी है इसमें, कितनी शांति है, आत्मा जैसे भरपूर हो गई है, कुछ नहीं चाहिए, संसार की सभी इच्छाओं तृष्णा से जैसे मुक्त हो गई। इतना ऊंचा बाबा अनुभव करा रहे कि फीलिंग करनी है, चिंतन करते 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 बाबा के पास पहुंच जाना है, ऐसे फील करना है कि जैसे मैं सूक्ष्म तन में बाबा के सामने, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे है ना, फरिश्ता रूप में, फरिश्ता जीवन है, हल्का है, एकदम लाइट है, माइट है, और वहीं से पूरे संसार को सात आश की किरणें जा रही है ना। और जैसे देह जो है पूरी देह लाइट की बन गई है, और लाइट ही लाइट सारों तरफ फैल रही है, संसार के जितने भी दुखी अशांत आत्माएं हैं, जितने भी आत्माएं तड़फ रही हैं, बिचारी आजकल संसार में कितनी अशांति है, कितनी टेंशन में वो आत्माएं, तो उन सब आत्माओं की टेंशन समाप्त होती जा रही है, और एक अचेत भाव की तरफ अटेंशन जा रहा है, कि हमको मन ही मन कमेंट्री देते रहना है, अपने आप से बातें करते रहना है, बाबा से बातें करते रहना है, जो भी हमको संगम का समय मिला इसको पूरा सफल करना, हमको इसका पूरा फायदा लेना है, क्योंकि बहुत अमूल्य समय है, नहीं तो बाबा के अंत में क्या होगा, पछताना पड़ेगा। तो ये जितना भी थोड़ा सा समय हमारे हाथ में है, इसको हम किसी भी कीमत पर बर्बाद ना करें, है ना। अभी दो तीन दिन में एक मुरली आने वाली है, शायद 25 तारीख की आएगी, तो समय के ऊपर बाबा ने बताया वो कि अच्छे बच्चे कभी समय बर्बाद नहीं करेंगे, वो हमेशा साइलेंस में रहेंगे, शांति में रहेंगे, एक से मुरली जो एक मुरली एक से बढ़कर एक मुरली है ना। 14 अप्रैल वाली मुरली कितनी शक्तिशाली थी है ना। तुम्हें अंतर्मुक्ति की गुफा में रहना है, मन को मंदिर समझना है, तो हर मुरली से हमको कुछ ना कुछ सीखना है। मुरली जैसे हमारे विचार ही बन जाए, मुरली के आधार पर ही हमारे विचारों की उत्पत्ति हो, उसी के आधार पर हमारी सोच हो, संकल्प हो, बोल हो, कर्म हो, तो नेचुरल हमारे जो है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे हम। तो ये आज की मुरली थी, और इसमें बाबा ने प्रदान में क्या कहा कि संसार का वायुमंडल कैसा तमोगुणी वायुमंडल है, इस तमोगुणी वायुमंडल में क्या क्या है, कितनी टेंशन है ना। तो अपनी स्थिति कैसी बनानी है, अचल अडोल बनानी है, एक रस बनानी है ना। मास्टर सब शक्तिमान की स्थिति में स्थित रहना है। बाबा कहते हैं वायुमंडल तो और भी दिन प्रतिदिन खराब होने वाला है, बिगड़ने वाला है, ऐसे वायुमंडल पर तुम बच्चों को कमल फूल समान न्यारे प्यारे रहना है। तो अपनी स्थिति को सत्व प्रधान बनाना, शक्तिशाली बनाना है, इसलिए इतनी हिम्मत भी चाहिए, उसमें साहस शक्ति भी चाहिए। तो बाबा कहते वरदानों को हमेशा याद रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति है, चाहे लौकिक संबंध है, चाहे दैवी परिवार द्वारा, तो परीक्षाएं तो हमको हर एक से आएंगी, ऐसा नहीं सोच सकते हमको ब्राह्मण जीवन मिल के तो हम परीक्षाओं से मुक्त होंगे, समस्याओं से मुक्त होंगे। जिंदगी में हमने जो भी समस्याओं के बीज बोए हुए हैं, जितने भी हमने व्यर्थ संकल्पों के बीज बोए हैं, किसी न किसी रूप से तो हमारे सामने आएंगे, लेकिन अगर हम अच्छी स्थिति में स्थित रहते हैं, जैसे बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में, अर्थात लंबे समय तक हम अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं, तो कोई भी समस्या हमको हराएगी नहीं, हमको टेंशन नहीं लाएगी। हाँ, अटेंशन रखेंगे लेकिन हमारा मन उससे प्रभावित नहीं होगा, बल्कि अचल अडोल एक स्थिति में स्थित रहेंगे और हर समस्या का सामना करने में हम सक्षम हो जाएंगे। ना केवल हम बल्कि दूसरे को भी सक्षम कर सकेंगे जब हम स्वयं की स्थिति को सक्षम बनाते रहेंगे। तो ये आज की मुरली थी और वरदान सौगंध बहा ने वरदान जैसा दे दिया, वरदाता बाप को अपना क्या मानो सच्चा साथी, है ना। तो क्या होगा, वरदान झोली बढ़ती जाएगी। तो कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं कि इस स्लोगन को याद रख लिया जाए कि वरदाता बाप मेरा सच्चा साथी है। कितनी सुंदर फीलिंग है ये, और वरदानों से मेरी झोली उभर रहा है। तो एक दूसरा होमवर्क है कि मैं आज 21 वरदान लिखूं या 31 वरदान लिखूं, कौन से वरदान। पूरा भले नहीं लिखे हम, लेकिन खाली टाइटल, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ, मैं मास्टर बीज रूप हूँ, मैं परम नाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, मैं सुराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं सदा संतुष्ट मणि हूँ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस पावर हाउस हूँ, मैं सर्व आत्माओं को सुख देने वाली आत्मा हूँ, सच्चा सच्चा सुखदेव हूँ, मैं सर्वशक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ, मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ, मैं द्वितीय गुणधारी मूर्त आत्मा हूँ। तो ऐसे हम अनेक वरदानों की लिस्ट बनाएं, उनके स्लोगन बनाएं। तो वरदान ही अगर हमको स्लोगन आज का अगर हम याद रखें तो ये भी कितनी सुंदर फीलिंग है सारे दिन में कि मैं वरदाता बाप का साथी हूँ, वरदाता बाप मेरा साथी है, मैं उसके साथ साथ हूँ, वो मेरे साथ साथ चल रहा है, वो मेरे हर कदम हर सेकंड मेरे साथ में है, और मेरी बुद्धि रूपी झोली को वो निरंतर वरदानों से भरता जा रहा है। मेरी बुद्धि रूपी झोली वरदानों से भरपूर होती जा रही है और मुझे श्रृंगार रहा है, मुझे वरदानी मूर्त बना रहा है। फीलिंग करनी जैसे बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है और बाबा जैसे मुझे सूक्ष्म पतन में लेके जा रहे हैं, इस संसार के सब प्रकार के बंधनों से मुक्त कर रहे हैं, प्रकृति के पांचों तत्वों सहित में आत्मा इस संसार से जैसे मुक्त होती जा रही हूँ, संसार के सभी संबंधों से, लौकिक संबंधों से, हर प्रकार के बंधन से मुक्त होकर मैं आत्मा जैसे सूक्ष्म पतन में पहुंच गई हूँ फरिश्ता बनकर, और बाबा के सामने बैठी हूँ बाप दादा फरिश्ता बनकर, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा बैठे हैं फरिश्ता बनकर, और मैं उनके सामने हूँ और बाबा की आंखों से शक्तिशाली वरदानी किरणें आ रही हैं, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है और मैं बिल्कुल हल्की होती जा रही हूँ, न्यारी प्यारी होती जा रही हूँ। तो ऐसे सुंदर सुंदर विचारों को अपने मन में रमण करते रहना है उनका, तो ऐसे फीलिंग होगी जैसे बाबा सचमुच समाया हुआ है, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हो गई हूँ, मैं आत्मा परमात्म प्यार मुझ पर बरस रहा है, परमात्म शक्तियों की बरसात मुझ पर हो रही है, परमात्म प्रेम का झरना मुझ पर बरस रहा है और मैं आत्मा आनंद विभोर होती जा रही हूँ। तो इन विचारों के साथ हम हर समय अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तो हमारे पुरुषार्थ में नवीनता भी आती जाएगी और इस ब्राह्मण जीवन में रुचि बढ़ती जाएगी और आगे बढ़ने के नए नए संकल्प भी आएंगे, नए नए युक्तियां टचिंग कराएगा बाबा, ना केवल स्वयं बल्कि दूसरों को भी हम नए नए युक्तियां बता सकते हैं जब हम स्वयं पर अटेंशन रखेंगे। तो ये आज सारी मूल्य थी कि हम सारे संसार की आत्माओं से कोटों में से कोई आत्माएं हैं, कोई ना कोई आत्माएं हैं। तो बाबा कहते अपने भाग्य को समझते मेरे को समय ऐसे आने वाला है कि वो आत्मे संसार की आत्मे हद के वैराग्य में आएंगी, कभी कभी रिहर्सल तो होती रहती है, लेकिन जब तुम आत्माओं का हद का वैराग्य निरंतर स्वतः हो जाएगा तो उन आत्माओं का ध्यान भी एक रचयिता बाप की तरफ जाएगा कि बाप एक ही है, फिर वो अनुभव करेंगी, वो भी महसूसता करेंगी कि सच्ची सुख शांति हमको यहीं से मिलेगी, और आखिर वो दिन तो आना ही है और उसको समीप लाने के लिए बाबा ने हम सब आत्माओं को निमित्त बनाया हुआ है। तुम अपनी जिम्मेवारी का एहसास समझकर अगर चलते रहे तो निश्चित तौर पर बाबा की नजरें हमारे पर टिकी रहेंगी, हम उसकी छत्रछाया में सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, वातावरण को शक्तिशाली बनाते रहेंगे और जीवन में इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा ने अमृत वेले की महत्ता बताई, अमृत वेले के बाद टीचर कैसे पढ़ाता है, फिर उसके बाद कर्म करते कौन सी सामग्रियां रखनी है, फिर उसके बाद नशा भी कौन सा रखना है, सोते समय क्या क्या चिंतन में करना है, नशा केवल बुद्धि में देखना बल्कि उसको बार बार पीते रहना है, तो इतनी सारी बातें बाबा ने बताई। तो बाबा कहते अपने भाग्य की लिस्ट बनाओ और बार बार उसको देखो, इमर्ज करो, तो उससे क्या होगा, समर्थ बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे, सब प्रकार की चिंताएं खत्म, एक परमात्म चिंतन में डूबे रहेंगे। और जो परमात्म चिंतन में डूबा रहता है, सागर में डूबा रहता है, तो माया की नजर में उसको पढ़ नहीं सकते। हम जैसे परमात्म ज्ञान के चिंतन से बाहर निकलते हैं, तो क्या बाबा कहते हैं, माया का गेट खुल जाता है, माया का दरवाजा तुम बच्चे खोल देते हो, खुद इंतजाम करते हो और माया तो इंतजार करती रहती है। तो बुद्धि अपने आप शुद्ध होती जाएगी इस ज्ञान के चिंतन में रहने से, हमारे ऊपर बाबा की कृपा भी बनी रहेगी। तो ये आज की मुरली थी, तो हमको ये अटेंशन रख के हमको बड़ी गंभीरता से उस दिन धाना साकार मुरली में तीन बातें कि इस ज्ञान मार्ग में धैर्यता, गंभीरता और समझदारी, हमको बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो मन में भी नहीं थी, चित्त में भी नहीं थी, और वो आएंगी, तो वहां हमको हमें अपने धैर्य को खोना नहीं है, धीरज रखना है। कल की सारी मुरली धीरज के ऊपर ही थी, तो बाप तुम बच्चों को धीरज देते हैं, तो हमको बाबा कितना हमारे ऊपर कितना धैर्य रखते हैं, कितने लंबे समय से हमको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस गति से हमारा परिवर्तन होना चाहिए उस गति से हम अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं और बार बार धोखा खाते रहते हैं। पता भी है हमको ये चीज नहीं करनी चाहिए, हम फिर भी करते हैं, तो हम खुद ही अपने साथ धोखा करते रहते हैं, फिर भी बाबा का कितना धैर्य है। तो इस ज्ञान मार्ग में भले हम उतार चढ़ाव में आते हैं, लेकिन इसमें अपनी धैर्यता नहीं खोनी है, गंभीरता पूर्वक पुरुषार्थ में लगे रहना है। तो समझदारी वही है, ज्ञान हमको समझदार बनाने के लिए है, हर बात की समझ चाहिए, बैलेंस बनाए, लौकिक अलौकिक में हर चीज का बैलेंस। ज्ञान माना हमको हर एक बात की समझ, जैसे उस दिन बाबा ने बताया तुमको हर बात में सहनशील बनना है, तो ये ज्ञान है ना, तो ज्ञान में हर बात की समझ देता है ये ज्ञान। ज्ञान जैसे ये तो हमारा श्वास है, अगर श्वास नहीं हो तो जीवन नहीं है, इसी तरह अगर ज्ञान नहीं है तो ब्राह्मण जीवन भी उसका हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।